ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। गृहमंत्री अमित शाह ने दोहराया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। गृह मंत्रालय के कामकाज पर राज्यसभा में चर्चा का उत्तर देते हुए उन्होंने ये बात कही।
आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति प्रधानमंत्री की है। मोदी जी के आने के बाद उरी और पुलवामा में हमला हुआ, 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके जवाब।
गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार के कार्यकाल में आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद खत्म होने की कगार पर है। श्री शाह ने जोर देते हुए कहा कि अगले वर्ष मार्च तक भारत में नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान का सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देना और प्रायोजित करना क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी बाधा है। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया को स्पष्ट रूप से पता है कि वास्तविक मुद्दा पाकिस्तान का सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देना और प्रायोजित करना है।
The world clearly knows that the real issue is Pakistan's active promotion and sponsorship of cross-border terrorism. In fact, this is the biggest roadblock to peace and security in the region.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वंचित वर्गों के प्रति संवेदनशीलता देश या समाज की प्रतिष्ठा निर्धारित करती है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित पर्पल फेस्ट में कल शाम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि करुणा, समावेशिता तथा सौहार्द भारतीय संस्कृति और सभ्यता के मूल्य रहे हैं। पर्पल फेस्ट का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के दिव्यांगताओं और लोगों के जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, समानता और व्यक्ति की गरिमा पर बल दिया गया है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि सरकार सुगम्य भारत अभियान के जरिए दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण और समान भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास कर रही है।
ये उत्सव दिव्यांग लोगों के लिए अपने कौशल और प्रतिभा का प्रदर्शन करने का एक अवसर है। मैं दिव्यांग भाई बहन से जो भी मिलती हूँ उनके हौसलों और सकारात्मक दृष्टिकोण को देखकर मुझे ऊर्जा प्रेरणा करती है। दिव्यांग कलाकारों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों का प्रदर्शन भी किया गया है।
महाराष्ट्र सरकार ने कल मुंबई में जर्मनी के बारेन वुटेम्बर्ग के आर्थिक और राजनीतिक विभाग के प्रतिनिधि मंडल के साथ चर्चा की। इस दौरान रोजगार के अवसर और कौशल विकास के मुद्दों पर बातचीत हुई। वर्चुअल बातचीत के दौरान महाराष्ट्र के कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने राज्य के युवाओं की क्षमताओं और भविष्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनके प्रशिक्षण के महत्व पर बल दिया। ब्रिटेन के हिथ्रो हवाई अड्डे से उड़ानें फिर शुरू कर दी गई हैं। पास के बिजली घर में आग लगने और बिजली कटने के कारण यूरोप के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया था। इस बीच लंदन अग्निशमन दल ने जानकारी दी है कि हिथ्रो हवाई अड्डे के पास अब हालात नियंत्रण में हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि बोइंग कंपनी अमरीकी वायुसेना के लिए अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-47 बनाएगी। ओवल ऑफिस में कल रात रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने संवाददाताओं से बातचीत में इसकी जानकारी दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये F-47 सबसे आधुनिक, सक्षम और घातक होंगे। उन्होंने कहा कि अमरीका कुछ सहयोगियों को इससे कुछ कम गुणों वाले F-47 विमान बेचेगा। आशा है कि नए F-47 विमान ड्रोन के साथ हवाई अभियानों में रैप्टर का स्थान लेंगे। बिहार आज अपना 113वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस वर्ष बिहार दिवस का विषय है उन्नत भारत, विकसित बिहार। इस अवसर पर पूरे राज्य में बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाले कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ने उम्मीद जताई कि बिहार के लोग अपनी प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से विकसित बिहार और समृद्ध भारत के निर्माण में अपना योगदान देते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने बिहार को वीरों और महापुरुषों की पावन धरती बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय इतिहास को गौरवान्वित करने वाला ये राज्य आज अपनी विकास यात्रा के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट का 18वां संस्करण आज से शुरू हो रहा है। कोलकाता में आज आरंभिक मैच में मौजूदा चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 पर शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।